फिर इसी तरह आप देखिए कि गुफ्तगू के अंदर एक चीज़ जो आपने अपनी भी नोट करनी है, और वो क्या है कि सर हिला हिला के बातें करना। बाज़ लोग हैं ना, वो सर हिलाते रहते हैं, इससे इतनी नेगेटिव फीलिंग आती है। अब आप एक दूसरे की चेक करेंगे ना, तो आपकी भी कोई चेक करेगा, और खुला दिल है तो बिल्कुल बताएं। बाज़ लोग हिलते रहते हैं, मेरे जहन में एक किसी की पर्सनैलिटी आती है, वो बात करते हैं ना, वो यूँ हिलती हैं, उनको नहीं पता होता वल्लाही, वरना कोई हिले। लेकिन मैं सोचती हूँ कोई मुखलिस सिंसियर ज़िंदगी में मिला ही नहीं, 30-40 साल की ये होने को आ गई, कभी किसी ने इनको नहीं कहा। कुछ जो है ना, वो जैसे आंखें मटकाने का एक स्टाइल होता है, बॉडी लैंग्वेज पे पूरी और एक ट्रेनिंग सेशन हो सकता है। मैंने सबीलुल जन्ना से ये नियत की हुई थी कि जब आप लोगों के दिल खुले हो जाएंगे, एक एक को बुला के ऑफिस में बता दूं कि ये आपकी बात है, ये आपकी है, ये आपकी है, यकीन करें। लेकिन इसके लिए हौसले की ज़रूरत होती है। हम इधर जनरल सुन सकते हैं, लेकिन मैं कह दूंगी तो वो फ़ौरन शुरू हो जाएंगे, नहीं वो तो मेरी माँ का कसूर है, उसने मैं कभी बताया ही नहीं, और ये तो मेरे मियाँ ने मुझे ऐसा कर दिया कि मेरी तेवरी हर वक्त चढ़ी रहती है, मैं तो बड़ी खुशगवार चेहरे वाली थी। हमारा मसला ये कि हम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन यकीन करें ये अल्लाह की नेमत भी है। मैं कल एक जगह शेर पढ़ा रही थी, इलामा इकबाल, कई क्लास में कहीं बात हुई थी ना, कि मेरी तरह खुदा तुझे साहिब असरार करे। मुझे कोई अपने बारे में खुशफहमी नहीं है, बल्कि बड़ा रोग है ये कि बंदे को हर चीज़ दिख जाती है। वो कहते हैं ना कि आगही का सफ़र भी बड़ा मुश्किल है, तो मैं अक्सर जिस चीज़ पे अपने जहन में बहुत उलझती रहती हूँ ना, वो ये कहती हूँ कि ये चीज़ मुझे पता चली और को क्यों नहीं पता चली। मैं करूँगी इशारा, सब सही कर देंगे, या ये काम कैसे करना है, या चीज़ ये है नहीं, ये से ये कहना है, आजकल ये ज़रूरत है। मेरा दिल करता है कि मेरे से आगे कुछ सोच के मुझे बता के लिख के रखा हो कि जी ये चीज़ अब हमारे कामों में पेंडिंग है, या इस पे नज़र की ज़रूरत है। तो ये एक नेमत भी है अल्लाह की रहमत से कि आपको पता लग जाती है। शुक्र है सबको नहीं पता चलती, वरना तो दुनिया ही किसी के रहने के काबिल ना हो। लेकिन फील करें, बिल्कुल क्वाइट इस तरह से होना चाहिए बंदे को जैसे ठहरा हुआ पानी। पर्सनैलिटी कैसे है, जैसे आप किसी पानी को ठहरा हुआ सोचें, उसमें हल्की हल्की लहरें आती हैं, फिर आप देखते हैं कि पत्थर आता है कहीं से, कोई उसमें जाके कट से पत्थर फेंकता है, आप देखेंगे उस पत्थर के फिरते थोड़ा सा शोर होगा, फिर थोड़े से गर्दाब उठेंगे और फिर पानी हल्का होगा। तस्वुर में आ रहा, कोई झील का किनारा। इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, कूल एंड काम, क्वाइट। कोई बुरी बात कहे आपको, किसने ताना दिया, किसने गाली दी, अंदर एक पत्थर गिरा, गिरता है। कोई इंसान जो है वो फौलाद का नहीं बना हुआ कि उसको दूसरों के तानों से या उसकी बातों से पतन से, इवन हमसे छोटे हमारे बच्चे या हमारे कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो हमारे आगे बोल ना सकें, लेकिन ये यकीनी बात है कि उनके अंदर पत्थर गिरते ही कुछ ना कुछ एग्रेसिवनेस होता है। एक मैंने बात भी कहीं शायद पहले शेयर की थी कि एक दफ़ा एक मालिक था, तो वो मुलाजिम के साथ मामला करता था, फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो दोनों जुदा होने लगे, ख़त्म हो रही थी डील। तो मालिक ने कहा कि देखो तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं अक्सर गुस्से में तुम्हें बोलता था। तो वो जो मुलाजिम था उसने कहा जी कोई बात नहीं, हिसाब बराबर। उसने कहा ये क्या हिसाब बराबर, कहने लगा आप मुझे ऊंची कहते थे, मैं उस वक्त वही बात आपको दिल में कह देता था। सच, इट्स ट्रू। आपका साल 2 साल का बच्चा, आप मान लीजिए कि आप दिन में जितनी दफ़ा उसको कहते हैं ओए चल चल उठ चल उठ, आप लिख लें कि इसके ट्रेसेस उसके माइंड पे बन रहे हैं। कभी अपने बच्चों को ओए तोए करके ना बुलाएं, यकीन करें पर्सनैलिटी राख हो जाती है उन लोगों की। चल उठ चल उठ चल उठ मोटू, चल छोटू, चल गुड्डू। बच्चे को कभी भी ह्यूमिलेट ना करें। मेरा दिल करता है कुछ लोगों को देख के कि कभी वक्त का पहिया पीछे घूमे और उनकी पर्सनैलिटी में झोल आ गया ना, जो बचपन की डांटों से या बचपन के तानों से वो अब कहीं वापस चले जाएं। राख हो जाती है पर्सनैलिटी बिल्कुल, लोग सारी ज़िंदगी उबर ही नहीं सकते क्योंकि बचपन में इतना उनको ओए तोए की होती है। बच्चे को क्या कहें, ये मास्टरपीस है, ये शाहकार है, ये मेरे अल्लाह ने इतना प्यारा बच्चा बना के दिया, मैं इसको डांटूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। चुप कर जाएं, वो रोए आप भी रोएं, लेकिन कभी किसी की इज्जत नफ्स को मजरू ना करें। और सबसे ज़्यादा हम अपने बच्चों की करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी हो रही होती है, शौहर हमें डांटते हैं, हम बच्चों को डांट लेते हैं, सास ने हमें ताना दिया, हम जाके बहू को दे आते हैं ताना। तो ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंसान को फ़ायदा देगी अगर वो इस पे गौर करे। अभी सिर्फ बॉडी एक्शन पे ही पूरी पे बात करने को दिल चाह रहा है, लेकिन हाथों को आप चेक करें अपने, दूसरा आंखों का एक स्टाइल है ना। एक और चीज़ जो हमारे गुफ्तगू में आती है वो आप खुद नोट करें, लेकिन आप खुद कब करेंगे, जब आप वाकई किसी दूसरे की मदद लेंगे। और वो क्या है कि बास लोग जो है ना, वो हंसते कैसे हैं कि पूरी आंखें अंदर चली जाती हैं, जैसे बहुत चिकी सा बच्चा हो ना, मोटा सा बच्चा है, तो वो हंसता है तो उसकी आंखें अंदर चली जाती है ना। कुछ लोगों की हंसते हुए पूरी आंखें यहाँ से सुकड़ के ना पुतलियाँ, तो आंखें अंदर चली जाती हैं और साथ वो बोल रहे होते हैं, ये भी बैड एक्सप्रेशन देते हैं। बस दफ़ा होता क्या कि बास लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, हंसते हैं ना, तो साथ ही हंसने हंसने के साथ बात करते हैं। ये भी एक झोल लिखी है, हंसने के साथ साथ बात करना, और उस हंसने में कुछ ना कुछ मुंह से पानी के या बुलबुले या छींटे ज़रूर निकलते हैं। बहुत बुरा लगता है। आप सोचें ना, आप अल्लाह का दीन कन्वे करने जा रही हैं, आप जा रही हैं हाथ हिलाती हुई लहराती हुई, अभी तो हम गुफ्तगू पे बात कर रहे हैं ना, फिर कहीं और भी इनको मौज़ों को छेड़ लेंगे कि चलते हुए हमारे हाथ कहाँ होने चाहिए और बैठते हुए हाथ कहाँ होने चाहिए। जैसे मैंने एक चीज़ फील की कि आपकी क्लास का राउंड लेना होता है ना, अब जब राउंड लिया जाए, ये अब आपको अलग से सिखाऊंगी कहीं फिर अगर ज़िंदगी ने वफा की तो, लेकिन जब आप राउंड करें तो उस वक़्त आप अगर सीने पे हाथ बांध के राउंड करें कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगेगा कोई आपको चेक करने आया हुआ है। बहुत लाइटली होना चाहिए, यानी एक एक चीज़ को फील करें। अभी हम सिर्फ रहेंगे बोलने के और गुफ्तगू के अंदाज़ में। एक और चीज़ क्या है जिसके अंदर हमारे गुफ्तगू के अंदर कुछ ना कुछ बात होती है, और वो क्या है कि बास दफ़ा लोग गुफ्तगू के दौरान किसी के कंधे पे जाके हाथ रख देते हैं या हाथों में हाथ डालना। मसलन आप देखिए, कुछ लोग बात कर रहे होते हैं ना तो फिर आगे हाथ कर देते हैं, हाथ मारो, देखा अपने हथेली पे हाथ मारना, ताली बजाने वाला अंदाज है। अच्छा, अगला कुछ ना करे कहते हैं अच्छा जी आपने जो है नहीं किया ये, अब आप खुद फील करें। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये सारी चीज़ें जब हम इस वक्त डिस्क करें, किस वक्त चेक करेंगे? जब अपने बड़ों से बात करें, उस्तादों से, बुजुर्गों से, नहीं, तब तो हम बेहतरीन बात करते हैं। असल हमारी गुफ्तगू जो असल है ना मेरी, मैं असल में क्या हूँ जब मैं बेतकल्फी में अपने घर वालों से बात करूँगी, मैं अपने मियाँ से कैसे बात करती हूँ, मैं अपने घर वालों से कैसे बात करती हूँ। बाज़ दफ़ा सेम मौके पे हम एक दूसरे बंदे के साथ बात कर कुछ और रहे होते हैं। एक दफ़ा मेरा नंबर किसी ने गलत सेव किया होगा, होता है अक्सर, मेरे से भी बहुत दफ़ा ये गलती होती है। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरा नंबर अपने किसी बड़े क्लोज दोस्त या फ्रेंड के नाम पे सेव किया हुआ था। मैंने हेलो किया, वो शुरू हो गई, अल्लाह की पनाह, ना उन्होंने मुझसे हाल पूछा ना वो जो अपना जो उनके बातों में था, वो उन्होंने भी किसी और को फ़ोन किया हुआ था, उनको किसी का कोई मामला था, वो एक्सपेक्ट कर रही थी उनका फ़ोन। सुनती रही, बोलती रही, मैं चुप रही। जब वो पूरी बात कर चुकी तो मैंने कहा जी हेलो, फिर मुझे लगा उनके हाथ से रिसीवर गिरा है। बस लोग मौका ही नहीं देते। ये भी एक बात लिखी है, जब कभी किसी से बात करें उस वक़्त ये सामने रखिए कि अगला उस वक़्त किस मूड में है। एक और चीज़ जो गुफ्तगू में, वो कह के आपस में फासला, आप जिससे बात करें उसके सर पे ना चढ़ जाएं, जिस्मानी फासले को मुनासिब रखें। बाज़ लोग ना बात करनी होती यूं आ जाते हैं पास। अब देखिए मिसाल है कि हम यहाँ बैठते हैं ना 3-4 घंटे के साथ, अगर कोई रोज़ा भी है या ब्रेक भी नहीं लेता, डेफिनेटली जब आप फारिग बैठते हैं तो आपके मुंह से बसांत आती है। अगर आपके पास कोई इलायची नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, पानी नहीं पीते, कुछ लोग कभी भी ऐसा होता है ना, किसी भी जगह हो सकता है, करीब आके इतनी बात करते हैं कि मुंह की बसांत आती है। बाज़ लोगों के अबाय में से स्मेल आती है, बाज़ के पास से पसीने की बू आती है। बाज़ दफ़ा गुफ्तगू कोई करता है तो इंसान का दिल चाहता है कि अभी नहीं, बिल्कुल एक डिस्टेंस प्लीज हर एक से। अब इस बात को सिर्फ स्कूल की तक ना रखें, आप ज़िंदगी में कहीं भी जाएं थोड़ा सा पीछे रहें, ऐसे रहें कि अगले से बात करने वक्त अगला भी खुशी महसूस करे। फिर इसी तरह आप अपनी गुफ्तगू को अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक और टिप इसमें क्या हो सकती है कि थोड़ी देर जब एक मौजू पे बात हो जाए तो फिर थोड़ी देर के बाद मौजू बदल दें। एक मौजू पे 10 से 15 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इवन अगर बहुत सारी बातें ना तो आप कहें अच्छा चलो पहले चाय पीते हैं फिर बात करते हैं, फिर बाद में कर लें, ये ना हो कि वो चाय इतनी लंबी हो जाए कि वो बात ही ख़त्म हो जाए। अंदाज बदलें, खूबसूरत तरीके से बात करें। फिर इसी तरह से एक और चीज़ भी जो हमें हमारी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, वो क्या है कि हम कम से कम अल्फाज बोलें। हदीस में आता है कि बेहतरीन कलाम कौन सा है, कल्ला व दल्ला। अब ये दो लफ्ज़ हैं, आप इसका तर्जमा करें ज़रा, कल्ला व दल्ला, कलील हो कल्ला कलील से और दल्ला दलील से, कलाम कलील हो मुख्तसिर हो और दलील वाला हो। और अल्लाह के नबी सल्लम की ये एक खुदा दाद किस्म की सिफत थी, जवामिल कलिम थे आप, तहादु तहाबु, तोहफा दो तोहफा ले लो। बस दफ़ा मैं किसी को ईमेल लिखनी हो, टेक्स्ट मैसेज करना हो ना, तो मैं पहले अपने दिल की बातें उसमें लिखती हूँ, फिर मैं उसको छांटती हूँ। मेरे पास मौका हो ना तो मैं सोचती हूँ ये जुमला क्या है। जैसे मैं मिसाल देती हूँ, आज सुबह की देती हूँ, मैं आपका अपना खुद ही पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे इनको कुछ कहना था। अब आप देखिए कि मैंने इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी ना, मुझे ये लगा कि मुझे नहीं पता ये इस वक्त किस मूड में है। मैं चेक ये करना चाह रही थी कि नंबर एक सदफ भी वक्त से पहले पहुंच रही हैं, दूसरी बात ये कुछ आपके गिफ्ट्स इधर रख गई थी कल रात को मैंने देखे, तो मैंने कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देनी थी। तो मैंने काफ़ी लंबा लिखा पहले 2-3 जुमले, फिर मैंने इकट्ठा किया अस्सलाम वालेकुम बस इसको लिख के, फिर मैं लिखा डियर सदफ प्लीज़ पुट ऑल गिफ्ट्स इन ग्रीन बैग्स एंड रिमूव फ्रॉम चेयर बिफोर क्लास। ये 3 जुमले थे जिसको मैंने काटा। पहले मैंने पूछना था कि सदफ आप वक्त पे आ रही हैं, नंबर एक मेरे जहन में ये क्वेश्चन था, वो इसमें आ गया ना। सदफ इसके जवाब में एक ही जुमला लिख दे कि उस्ताज़ा आई एम नॉट कमिंग टू क्लास, तो मुझे पता चल जाना था कि नहीं आ रही। फिर मैंने इनको एक दो और चीज़ें भी लिखनी थी, लेकिन मुझे लगा कि इस एक जुमले में नंबर एक ये काम भी कर देंगी, ये क्लास से पहले भी पहुँचेंगी तभी तो यहाँ से उठाएंगी ना, तो 3 जुमलों को मैंने एक में किया। और ये सुबह मैंने घर से किया, ये सिंपल सी मिसाल है, कुछ सोच के नहीं किया। लेकिन मैं अक्सर जब भी कोई मैसेज किसी को लिखती हूँ ना, तो मैं फिर बाद में उसको खुद पढ़ती हूँ। और ये डियर सदा मैंने बाद में लिखा, पहले नहीं लिखना था। अब ज़रा सुनिए इस जुमले को, मैं लिखती अस्सलाम वालेकुम प्लीज़ पुट ऑल गिफ्ट्स इन ग्रीन बैग्स एंड रिमूव फ्रॉम चेयर बिफोर क्लास। क्या लगता इनको हुक्म लगना था? मैंने तो प्यार से लिखा, ये सोचेंगी ये क्या बात है जी पुट एंड दिस। तो मैंने डियर सदफ इसलिए लिखा कि इनको लगे कि मैं गुस्से में नहीं कह रही। इन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि दौरे कुरान में किसी ने इनको क्लास के दौरान मैसेज लिखा कि एसी बंद कर दो, तो ये कहती मुझे बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने मुझे सीधा हुक्म दिया, क्लास के दौरान ठंड लगी किसी को, उन्होंने कहा एसी बंद कर दो। तो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। अभी हम आगे चलते हैं, अभी तो हमारी ज़ुबान की गुफ्तगू है ना, बाकी भी करेंगे इंशाल्लाह राइटिंग की गुफ्तगू। फिर इसके बाद ये है कि एक चीज़ जो आपकी गुफ्तगू को बड़ा खूबसूरत करेगी ना, वो इखलास है। अरबी की एक कहावत है जिसका खुलासा हमारी उर्दू में भी बोलते हैं कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक जाती है। अगर आप चाहते हैं ना कि लोगों को आपकी गुफ्तगू अच्छी लगे, तो आप लोगों के लिए मुखलिस हो जाएं, रो पड़ें, दर्द की बात हो। आपको अपने बच्चे की बेहतरी चाहिए ना, आपके बच्चे को आपकी गुफ्तगू से पता चले, उठो नमाज़ पढ़ो, इसको आपके इखलास के साथ दर्द के साथ आप बच्चे को इस तरह बुलाएं नमाज के लिए कि उसको लगे कि ये मेरी माँ का मसला नहीं, ये मेरा मसला है, और ये माँ अपने लिए नहीं कर रही, मेरे लिए कर रही है। एक और चीज़ जो गुफ्तगू में नोट करने की है, वो क्या है कि आप असाबी तनाव का शिकार ना हो। बस दफ़ा हम टेंस होते हैं, स्ट्रेस्ड हैं, इस तरह आप में आपको किसी वक्त किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, कभी फ़ौरन जवाब ना दें। मेरे साथ ऐसा ऐसे कभी कभी होता है, कोई किसी की बात मुझे बुरी लगे ना, तो मैंने कहती हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं भी बात नहीं करूँगी, थोड़ी देर खामोश रहें, फिर न्यूट्रल हों, शुक्र करें कि इससे बड़ी बात तो नहीं किसी ने कह दी, कोई और ऐसा तो नहीं हो गया। वहाँ पे आप जब भी कभी आप नंबर एक टेंशन में हो, और दूसरी बात जब आप गुस्से में हो, तो आप बोले ना। जब आप गुस्से में बोलते हैं अल्लाह अकबर, बम बारूद फटने से भी ज़्यादा बुरा लगता है। आज से ये बात पल्लू से बांध ले, घर वालों को भी जाके बता दें, लेकिन गुस्से से ना बताइएगा, लेकिन आज से जाके बता दें कि देखे जब मुझे गुस्सा आया होगा मैं नहीं बोलूँगी, क्यों? ताकि मैं अच्छा बोलना चाहती हूँ, खामोश रहें। नबी सल्लम ने तो खुद ही कहा कि जिसको गुस्सा आ जाए वो चुप कर जाए, थोड़ी देर में वो जोश उतर जाता है, फिर ठीक होता है। अमूमन हमारी लड़ाइयाँ कब होती हैं? जब गुस्से में हम भी बोलते हैं और फिर उधर से भी तू तड़ाक होती है, तो वो बात फैल जाती है। फिर इसी तरह एक चीज़ ये है कि जहाँ जोर देने की ज़रूरत हो और ताकीद की ज़रूरत हो, वहाँ अपने अल्फाज के जमाओ से उसको साबित करें। बस आप किसी को कहते हैं कि दूध ले आए, दूध चाहिए, और साथ आप सोचते हैं अच्छा चलो अगर मिला तो चीनी भी ले आइएगा। अब आपको पता है कि दूध अर्जेंट है, चीनी इट्स ओके, तो आपके उस जुमले की अदायगी में ये बंदे को स्टाइल से पता चले कि दूध ज़रूर आना है, चीनी भी ले आइएगा। यानी आप कहें कि दूध ले आए, चीनी भी ले आइएगा, इस टोन से पता चलता है कि चीनी की इतनी ज़रूरत नहीं है, दूध की ज़रूरत है। फिर इसी तरह एक चीज़ और है, और वो क्या कि जब हम किसी से भी बात करते हैं ना, तो उसमें नंबर एक आप अपनी गुफ्तगू में ज़ोर कैसे पैदा कर सकते हैं, अल्फाज और जुमलों की तरतीब ठीक करें। एक चीज़ और आपने नोट करनी है अपनी, और वो क्या है कि जिससे मैं बात कर रही हूँ मेरी आवाज़ की जो पिच है क्या उस मौके के लिए मुनासिब है। जैसे अब इस वक्त तो माइक यूज़ कर रहे हैं ना, अगर मैं इसको बंद करूं, अब मेरी बात आप तक पहुंच रही है, अब मैं बगैर माइक के बोल रही हूं इस वक्त, आप में से मेरा हालांकि अगली दो तीन लाइनों तक जा रही है, आप तक नहीं जा रही होगी ना पीछे आवाज़ मेरी। अब अगर मैं बिलफर्ज बिजली चली जाती है, कुछ भी हालात होते मुझे बोलना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस तरह बोलने की बजाय कैसे बोलूँ जी, और ये होगा, थोड़ा सा मेरे पर स्ट्रेस आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऊंची बोलना चाहिए। इसी तरह बहुत ऊंचा बोलना और बहुत आहिस्ता बोलना, ये हमारी गुफ्तगू में नागवारी पैदा करता है। बिल्कुल मुनासिब पिच हो, हुजम और गूंज आवाज़ की बराबर हो। फिर इस तरह एक और चीज़, और वो क्या है कि आप जब भी कोई बात करें तो ये जहन में ख्याल रखें कि मेरा एक एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है। कभी भी आपको किसी से बात करनी है ना, तो पहले वो बातें लिख लें, ये भी एक टिप है। फिर इसी तरह अपने गुफ्तगू के अंदाज में अपनी रफ्तार को चेक करें, घड़ी देखकर अपने जुमलों को नोट करें कि मैं कितना तेज़ बोलती हूँ या कितना स्लो बोलती हूँ। अगर आपको फील हो कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं ना, तो आप वही बात खुद से कहें, साथ अपनी घड़ी का टाइमर चला लें। मुनासिब, बहुत तेज़ तेज़ बोलना भी अच्छा नहीं होता। जैसे फास्ट फॉरवर्ड आप करके कोई चीज़ सुनते हैं तो कानों पे बोझ पड़ती है ना, इस तरह जब हम बहुत तेज़ बोलते हैं तो भी नुकसान होता है, और जब बहुत आहिस्ता बोलते हैं तो भी होता है। फिर एक और चीज़ गुफ्तगू में ज़ोर पैदा करने वाली, कि अल्फाज और जुमलों में वक्फ़ा होना चाहिए। कम अज़ कम एक जुमला बोलने के बाद 1-2 सेकंड तक चुप रहिए। जिस तरह कहते हैं ना गाड़ी चल पड़ती है, वो ठीक तरीका नहीं होता। एक और चीज़ जो हमारी गुफ्तगू के नाते से हमें हर दिल अजीज़ बनाएगी, और वो क्या है कि मसले को समेटने और हल करने की कोशिश करें। मसलन आप कहीं गई, दो लोग आपस में थोड़ी थोड़ी बात ऊंची नीची कर रहे हैं, मिसाल अब बहू बेटा की आपस में बात चल रही थी, आप पास से गुजरें, आप क्या करेंगी, आप मौजू को समेटें। अब जिन्हें कहा की कहने, तू दस की होया सी, पहले किन्ने कीता, उन्हें की किया, इसकी बजाय आप कहें चलो छोड़ो बस बाद में बात करेंगे, चलो खाना खाते हैं। रैपिंग स्टाइल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रैप अप कीजिए, मसले का हल ढूंढिए। फिर एक और चीज़ जिसको लोग गुफ्तगू में बहुत पसंद करते हैं, वो है दोस्ताना स्टाइल, फ्रेंडली स्टाइल ऑफ टॉकिंग। आपकी बात बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए। बच्चे से बात करें ना, तो बच्चे को आप अपनी फ्रेंड लगें, बड़े से छोटे से हर एक से जब भी बात करें तो आवाज़ में बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि जिससे दोस्ती की बात हो। फिर इसी तरह एक और चीज़ है, और वो क्या है, एतमाद। हमारी गुफ्तगू में एतमाद जब नहीं होता ना, तो हमें उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। एक और चीज़, दूसरों में दिलचस्पी लें, यदि आप कहीं बैठी हैं आप इंटरेस्ट लें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, कल हमारी एक मीटिंग थी, अहम मीटिंग थी, किसी और इंस्टीट्यूट से थी। अब हम उनको एक अच्छा प्रोटोकॉल देना चाहते थे, मैंने क्या किया, जाते ही बजाय इसके कि अगला बंदा आके हमें बताए कि हम ये करते हैं वो करते हैं, मेरे पास उनके पहले से कुछ ब्रोशर्स रखे थे। ये लोग गवाह हैं कि जब टेबल हमने उनके आने से रखा, तो मैंने अपने ऑफिस से ला के उनके ब्रोशर, अपने नहीं कि हम अपना बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, इधर आप आ रहे हैं हमारे पास, मैंने उनके ब्रोशर्स उस मीटिंग टेबल पर रख दिए। क्या सोच रखी कि जूं ही वो रूम में आएंगी, अरे हमारा ब्रोशर तो पहले ही पड़ा है, इसका तक इनको तो हमारे बारे में बहुत पता है। तो दूसरे में दिलचस्पी लेना जो होता है ना, ये अगले को आपके करीब कर देता है। फिर एक चीज़ जिसको लोग अमूमन गुफ्तगू में बहुत पसंद करेंगे आपकी इंशाअल्लाह ताला, वो क्या है कि लोगों को दाद देना या तारीफ़ करना उनकी। कभी भी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे भी आप खड़े देख रहे हैं ना कि किसी ने कोई बात बड़ी अच्छी की है या अच्छा काम किया है, एक तो जुमलों में नपा तुला उसको ज़रूर रिस्पॉन्स दें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। बस जब हम कहते हैं हाँ तारीफ़ की, तो सर पे चढ़ जाएंगे, ये दुरुस्त तरीका नहीं होता, इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह तवासो, जैसे मैं मुख्तलिफ़ लोगों को सुनती हूँ अल्लाह के हुक्म से, जब भी मौका मिलता है, कभी तिलावत सुन ली, कभी कोई लेक्चर सुन लिया, कभी इंग्लिश सुन लिया, कभी कोई और ज़ुबान सुन ली, मैं चीज़ जो लोगों की फ़ील करती हूँ वो क्या फ़ील करती हूँ कि कुछ के अंदर अपने इल्म का गुरूर है, तहक्कुमाना अंदाज़ होता है, बात अच्छी भी होती है ना, लेकिन बात से आप उनके फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन उस बंदे के लिए आपके दिल में जगह नहीं बनती, चूँकि बात अच्छी होती है आप ले लेते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं होती। फिर एक और चीज़ जो गुफ्तगू में लोगों को आपकी तरफ से बहुत पसंद आएगी, वो क्या है कि अगले को भी बात करने का मौका दें। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, ओके गो हैड, यू विल डू फर्स्ट। ओके टेक योर टर्न, गो अहेड, आई एम लिसनिंग। सुनते जाएं, अगले की सुने, पूरी सुन ले, बेहतरीन स्टाइल है। कोई आपसे किसी मौके पे भी बात करने आया है, घरेलू, ऑफिशियल, पर्सनल, कोई, आप पहले अगले की सुन ले। जी आप सुनाएं कि आप क्या सोच के हैं। जब हम दूसरे की बात सुन लेते हैं ना, तो उसके बाद अमूमन लोग फिर उस चीज़ के ऊपर अपने दिल की चूंकि सुना चुके होते हैं ना, तो फिर वो आपकी बात भी आराम से सुन लेते हैं। फिर इसी तरह एक चीज़ जिसको लोग बहुत ही आपकी तरफ से पसंद करेंगे कि कहीं भी अगर आपको कोई बात करनी है ना, तो बात करने से पहले आप क्या कीजिए, आप उनके लिए एक माहौल बनाएं, खुशगवार माहौल। कोई कैंडीज, कोई खाना, कोई पानी, कोई अच्छी चीज़ ऐसी रखें कि जिससे आपकी बात जो है वो आसान हो जाए।